एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं जिसने काफी हलचल मचाई थी, जेम्स फ्रे की अ मिलियन लिटिल पीसेस।
जी हाँ,
2003 में आई थी और इसे लेखक का मतलब बिल्कुल सच्चा खरा संस्मरण बताया गया था।
बिल्कुल, जेम्स फ्रे एक अमेरिकी लेखक हैं और इस किताब में उन्होंने अपनी अपनी शराब और क्रैक कोकीन की जो भयानक लत थी उसकी कहानी कही, और उससे जुड़े अपराध, फिर वो मिनेसोटा के एक नशा मुक्ति केंद्र में जो हफ्ते बिताए उसकी पूरी दास्तान।
इसकी शुरुआत ही बहुत चौंकाने वाली है ना, वो हवाई जहाज वाला सीन।
हाँ बिल्कुल, फ्रे जागता है हवाई जहाज में, चेहरा पूरा लहू लुहान, नाक टूटी हुई है और पिछले कुछ दिनों का उसे कुछ याद ही नहीं।
बाप रे,
पाठक को सीधे अंधेरे में खींच लेती है कहानी।
और शायद इसी वजह से, इसी बेबाकी के लिए इसे बहुत पसंद भी किया गया शुरू में।
बहुत ज्यादा, ओपरा विनफ्रे ने इसे अपने बुक क्लब के लिए चुन लिया और फिर तो रातों रात बेस्ट सेलर।
हाँ,
लोगों ने इसे नशे से उबरने की एक बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी की तरह देखा।
बिल्कुल, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया।
हाँ, वहीं पर असली ट्विस्ट है। करीब 3 साल बाद 2006 में एक बड़ा खुलासा हुआ।
अच्छा।
द स्मोकिंग गन नाम की एक वेबसाइट थी, उन्होंने सबूतों के साथ ये दावा किया कि फ्रे ने अपनी कहानी के कई जरूरी हिस्से या तो घड़े थे,
मतलब मनगढ़ंत।
हाँ, या तो पूरी तरह मनगढ़ंत या फिर बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किए थे, जैसे वो उसकी नाटकीय गिरफ्तारी की कहानी या फिर वो बिना एनेस्थीजिया के रूट कैनाल करवाना।
ये तो बहुत बड़ा खुलासा था।
बहुत बड़ा, और यहीं से ये किताब सिर्फ एक नशे की लत से उभरने की कहानी नहीं रही।
सही कहा, ये फिर सच्चाई क्या है, याददाश्त कैसे काम करती है, और खासकर संस्मरण लिखते वक्त लेखक और पाठक के बीच का वो जो भरोसा होता है,
बिल्कुल बिल्कुल,
उस रिश्ते पर एक बहुत जटिल बहस छिड़ गई।
तो आज हम इसी दोहरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, किताब के अंदर की दुनिया और उसके बाहर का ये पूरा विवाद।
तो चलिए पहले किताब के अंदर चलते हैं। ये एक संस्मरण है, तो इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ फ्रे की जिंदगी बिल्कुल बिखरी हुई है। लेकिन वो इस हालत तक पहुंचा कैसे, उसके शुरुआती सालों के बारे में किताब क्या बताती है?
देखिए, किताब कोई सीधी साधी क्रोनोलॉजी नहीं देती बचपन की।
अच्छा।
वो सब हमें बिखरी हुई यादों से पता चलता है, दर्द भरे कबूलनामे हैं उसकी आज की जो पीड़ा है उसके जरिए हम पीछे देखते हैं। कहानी का जो नायक है 23 साल का जेम्स, वो बताता है कि पिछले 10 साल से वो शराब, ड्रग्स और छोटे मोटे अपराधों में ही जी रहा है।
10 साल?
हाँ, और वो महसूस करता है कि वो बिल्कुल अकेला है, समाज से एकदम कटा हुआ, अंदर से हिंसा और गुस्सा भरा पड़ा है। पता चलता है कि वो उससे प्यार तो करते हैं लेकिन उसकी मदद नहीं कर पा रहे, लाचार महसूस करते हैं। और फिर वो एक फोन कॉल आता है।
हाँ, वो अहम कॉल।
बिल्कुल, जब वो एक क्रैक हाउस में है और उसके पेरेंट्स उसे आखिरी बार कहते हैं कि प्लीज पुनर्वास केंद्र चले जाओ, और वही कॉल है जो उसे उस केंद्र तक ले जाता है जहाँ कहानी का कह सकते हैं मुख्य हिस्सा घटित होता है।
तो ये सब उसके जीवन के उन तैयारी के वर्षों का नतीजा था जो उसे इस भयानक मोड़ पे ले आए।
सही कहा। अब आते हैं उसके उत्थान और संघर्ष वाले हिस्से पर। वो पुनर्वास केंद्र के 6 हफ्ते, ये किताब का दिल है समझिए। जब फ्रे केंद्र पहुंचता है उसकी हालत बहुत ही खराब होती है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, दौरे पड़ने का खतरा है, सालों के नशे ने शरीर को बिल्कुल खोखला कर दिया है।
और डॉक्टर क्या कहते हैं?
डॉक्टर से साफ साफ चेतावनी देते हैं, अगर उसने फिर से नशा किया तो मौत पक्की है, कोई शक नहीं।
ये सुनना ही कितना डरावना होगा, सीधे मौत का सामना।
बिल्कुल, और उसका संघर्ष सिर्फ शरीर का नहीं था, उसे वो जो नशे की भयानक तलब उठती है जिसे डिटॉक्स कहते हैं, उससे गुजरना पड़ा बिना किसी दवा के।
बिना दवा के?
हाँ, किताब इसे एक तरह की शिक्षा बताती है, दर्द को सहना सीखना।
और यहीं पर वो सबसे बड़ा मतलब विवादास्पद कदम उठाता है ना?
बिल्कुल, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस यानी एए का जो पारंपरिक 12 कदमों वाला प्रोग्राम है उसे पूरी तरह नकार देता है।
अच्छा।
खासकर वो विचार कि उसे किसी उच्च शक्ति के सामने अपनी शक्तिहीनता माननी होगी। वो कहता नहीं, बदलाव और मुक्ति सिर्फ अपने अंदर की इच्छा शक्ति से आएगी।
ये बात तो बहुत लोगों को अजीब लगी होगी क्योंकि एए का मॉडल तो बहुत स्थापित है।
बिल्कुल, और उसका ये इनकार उसे एक बहुत ही अकेले और मुश्किल रास्ते पर डाल देता है। किताब में वो एक घटना का जिक्र करता है, बिना एनेस्थीजिया के रूट कैनल करवाने का।
हाँ, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था कि वो बाद में झूठी निकली।
हाँ, वो झूठी निकली, लेकिन किताब में इसे उसके इसी दर्शन के प्रतीक की तरह दिखाया गया है, दर्द सहना, आत्मनिर्भर होना। ये उसका अपना तरीका था, भले ही वो कितना भी अजीब लगे, पर जैसे वो बड़ा हो रहा था, वयस्क बन रहा था।
तो इसी संघर्ष के बीच उसका एक तरह का उत्थान भी होता है जैसा किताब बताती है?
हाँ, होता है। केंद्र के नियम बहुत सख्त हैं, लेकिन वो फिर भी इंसानी रिश्ते बनाता है और ये रिश्ते उसके लिए जीवन रेखा जैसे बन जाते हैं। दो रिश्ते खासतौर पर उभरते हैं।
एक तो वो लियोनार्ड वाला है ना, जो खुद को माफिया सदस्य बताता है।
जी हाँ, लियोनार्ड। वो उसके लिए एक पिता जैसा बन जाता है, एक संरक्षक। लेकिन वो पारंपरिक किस्म का नहीं है। वो उसे ताकत और वफादारी का एक अलग, मतलब सिस्टम से बाहर का मॉडल दिखाता है।
और दूसरा रिश्ता?
दूसरा अहम रिश्ता लिली के साथ बनता है। वो एक पूर्व नशेड़ी है, पूर्व वेश्या है। उनके बीच एक तरह की निषिद्ध प्रेम कहानी शुरू होती है और ये जेम्स को जीने की एक नई, बहुत गहरी भावनात्मक वजह देती है।
तो वो अब सिर्फ अपने लड़ाई नहीं लड़ रहा?
नहीं, अब वो इन रिश्तों को बचाने और निभाने की भी कोशिश कर रहा है। और धीरे धीरे वो उन दूसरे मरीजों के बीच एक तरह का लीडर भी बन जाता है, जो उसकी तरह सिस्टम पर सवाल उठाते हैं।
तो किताब के नजरिए से देखें तो ये उसकी चरम उपलब्धि हुई।
हाँ, किताब तो यही प्रस्तुत करती है कि नशे पर काबू पाने के साथ साथ उसने प्यार, वफादारी, सहानुभूति जैसी मानवीय भावनाएं फिर से खोजी। ये उसकी विरासत है, जैसा वो किताब में दिखाता है।
चलिए अब किताब के नायक जेम्स के मूल दर्शन और मूल्यों पर बात करते हैं। सबसे ऊपर क्या नजर आता है?
देखिए, सबसे ऊपर तो है वो कट्टर किस्म की आत्मनिर्भरता।
हाँ,
हर चीज अपने दम पर करने का विश्वास। जैसे हमने कहा, एए के 12 कदमों को पूरी तरह नकारना। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो शक्तिहीन है।
उसका मानना है कि बचाने वाली शक्ति बाहर नहीं, अंदर है।
बिल्कुल, अंदर ही है। इसमें थोड़ा अस्तित्ववादी रंग भी है। ये मानना कि इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
अस्तित्ववाद यानी ये सोच के हम पूरी तरह आजाद हैं और हमें अपना मतलब, अपना मूल्य खुद ही गढ़ना पड़ता है बिना किसी सहारे के।
हाँ, कुछ वैसा ही। और ये उसके एंटी एस्टैब्लिशमेंट रवैये से भी जुड़ता है। वो किसी बने बनाए सिस्टम पर, चाहे वो मेडिकल हो या सामाजिक, उस पर निर्भर नहीं रहना चाहता।
उसका वो एक वाक्य भी था, मैं एक शराबी हूँ और मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ और मैं एक अपराधी हूँ, मैं एक इंसान हूँ।
हाँ, ये बहुत कुछ कहता है। वो खुद को किसी एक लेबल में नहीं बांधना चाहता। वो अपनी पूरी जटिलता को स्वीकार कर रहा है।
और दर्द को लेकर उसका नजरिया भी काफी अलग है।
बहुत अलग। आमतौर पर हम दर्द से बचते हैं, लेकिन वो उसे एक तरह की शुद्ध करने वाली, ताकत देने वाली शक्ति के रूप में देखता है।
मतलब दर्द को झेलने से ताकत आती है,
उसका यही मानना है। वो बिना एनेस्थीसिया वाली रूट कैनाल की कहानी, भले ही वो झूठी थी, पर वो इसी दर्शन को दिखाने के लिए थी।
उसकी प्रेरणाएं कैसे बदलती है? शुरू में तो सब डर से शुरू होता है।
हाँ बिल्कुल, शुरुआती प्रेरणा तो बस मौत का डर है, किसी तरह जिंदा रहना। ये एकदम नकारात्मक प्रेरणा है।
लेकिन फिर?
लेकिन केंद्र में रहते हुए, खासकर लियोनार्ड और लिली से जुड़ने के बाद, ये बदलती है। अब वो सिर्फ डर से नहीं भाग रहा।
अच्छा,
अब लियोनार्ड के भरोसे पर खरा उतारना है, लिली के साथ एक भविष्य बनाना है। अपने परिवार को जो दर्द दिया है उसका एहसास है, उसे ठीक करने की इच्छा है। तो ये सब सकारात्मक प्रेरणाएं बन जाती हैं।
तो डर की जगह प्यार, वफादारी, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद ले लेती है।
बिल्कुल। तो उसका मुश्किलों का सामना करने का तरीका भी सीधा टकराव वाला है। वो समर्पण नहीं करता, वो मुकाबला करता है,
चाहे वो नशे की तलब हो या नियम कानून।
हाँ, वो रिकवरी को एक जंग की तरह देखता है, जिसे उसे अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी दृढ़ता से जीतना है। वो हार मानने वाला नहीं है। कम से कम अपनी कहानी में वो खुद को ऐसे ही दिखाता है।
किसी भी कहानी में कुछ अहम मोड़ होते हैं जो दिशा बदल देते हैं। इस किताब के नैरेटिव में ऐसे कौन से 3 निर्णायक मोड़ आप देखते हैं? पहला तो शायद वो शुरुआत वाला ही होगा।
हाँ बिल्कुल, पहला मोड़ तो वही है, उसका हवाई जहाज में उस बुरी हालत में जागना, फिर क्लिनिक पहुंचना और डॉक्टरों का उसके शरीर को हुए नुकसान का पूरा सच बताना, और वो चेतावनी, अगली बार नशा मतलब मौत।
ये उसे हिला कर रख देता होगा।
बिल्कुल, ये उसे पहली बार अपनी नश्वरता का, अपनी मौत की संभावना का ठोस एहसास कराता है। अब चुनाव सिर्फ आदत छोड़ने या न छोड़ने का नहीं था,
अब ये जिंदगी और मौत का सवाल था।
सीधा सवाल। और इसी ने उसे ठीक होने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, वो शुरुआती डरी हुई ही सही, पर जरूरी प्रेरणा दी। शायद इसके बिना वो कोशिश ही नहीं करता।
सही बात है। दूसरा अहम मोड़ क्या था?
मेरे ख्याल से दूसरा निर्णायक मोड़ था उसका साफ तौर पर जानबूझकर 12 कदमों वाले प्रोग्राम को अस्वीकार करना।
अच्छा, वो काउंसलर के साथ वाली बात?
हाँ, जब वो साफ कहता है कि मैं किसी उच्च शक्ति के आगे नहीं झुकूंगा, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा।
ये इतना खास क्यों था? ये तो सिर्फ एक तरीके को मना करना हो।
हाँ, नहीं, ये सिर्फ तरीके को मना करना नहीं था। यहीं से किताब का जो मुख्य दार्शनिक संघर्ष है वो स्थापित होता है। ये उस पूरे सिस्टम से आजादी का ऐलान था जिसे वो कमजोरी मानता था, एक बैसाखी। इस फैसले ने उसे एक मुश्किल अकेले रास्ते पर डाला, पर वो उसका चुना हुआ रास्ता था। यहीं से उसकी रिकवरी सिर्फ नियम मानने की जगह अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन गई। उसकी वो आत्मनिर्भरता की कहानी यहीं से शुरू होती है।
ये दिलचस्प नजरिया है। और तीसरा मोड़?
तीसरा मोड़ है वो इंसानी रिश्ते बनाना, खासकर लियोनार्ड और लिली के साथ।
हाँ।
ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, ये उसके लिए जैसे जिंदगी की डोर थे। लियोनार्ड ने उसे सिस्टम के बाहर ताकतवर और वफादारी का एहसास कराया, उसके अपने रास्ते पर भरोसा मजबूत किया।
और लिली?
उसने क्या भूमिका निभाई? लिली का प्यार। उसने जेम्स को दोबारा इंसान होने का एहसास कराया, उसे खुद से बाहर देखने की वजह दी, किसी और के लिए जीने की वजह।
तो उसकी प्रेरणा बदली?
हाँ, उसकी प्रेरणा सिर्फ खुद को बचाने से आगे बढ़कर एक साझा खुशी, एक भविष्य की उम्मीद तक पहुंच गई। इन रिश्तों ने उसे वो भावनात्मक सहारा दिया जो शायद अकेले रहकर उसे कभी नहीं मिल पाता। ये दिखाता है कि कितनी भी आत्मनिर्भरता की बात करो, आखिर में इंसानी जुड़ाव बहुत जरूरी होता है।
अब अगर हम इस किताब की सच्चाई के विवाद से थोड़ा हटके देखें, तो फ्रेरी की इस कहानी से, चाहे वो जैसी भी हो, आम लोगों के लिए क्या मानवीय सबक मिलते हैं? आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
देखिए, किताब की सच्चाई पर सवाल अपनी जगह है, लेकिन जो विषय ये उठाती है वो तो बहुत असली और मानवीय है। नशे की लत, खुद को नुकसान पहुंचाने वाले पैटर्न से संघर्ष, ये आज भी कितने ही लोगों की हकीकत है।
हाँ, या उनके आसपास किसी की। और अपनी जिंदगी में कोई मतलब ढूंढना, अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करना, ये संघर्ष तो हम सब कहीं ना कहीं करते हैं।
बिल्कुल। और मुश्किल वक्त में इंसानी रिश्तों की क्या ताकत होती है, और वो कितने उलझे हुए भी हो सकते हैं, जैसे फ्रे के रिश्ते थे लियोनार्ड से, लिली से, अपने परिवार से, ये चीजें सोचने पर मजबूर करती हैं।
दर्द का सामना करने का विचार भी सोचने लायक है, भले ही वो रूट कैनाल वाली कहानी झूठी थी।
हाँ, लेकिन सवाल तो उठता है कि क्या दर्द से भागने की बजाय उसे झेलने में भी कोई शक्ति है? क्या मुश्किलें सहना हमें मजबूत बनाता है? फ्रे का जवाब हाँ था, और ये विचार अपने आप में अहम है।
और एक बात और, रिकवरी, किसी भी चीज से उभरना, चाहे वो नशा हो, कोई दुख हो या कोई बड़ी नाकामी, ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। किताब का अंत भी कोई सब ठीक हो गया वाला अंत नहीं है।
सही कहा, वो एक अनिश्चित भविष्य की तरफ इशारा करता है। ये दिखाता है कि संघर्ष खत्म नहीं होता, वो जारी रहता है। और किसी का बिल्कुल नीचे गिर जाना और फिर वहां से उठकर खुद को फिर से बनाने की कोशिश करना, ये एक ऐसी थीम है जिससे हर कोई जुड़ सकता है, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं। कहानी पर शक होने के बाद भी वो संघर्ष का जज्बा कहीं ना कहीं छू जाता है।
तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए अगर हम तीन मुख्य बातें निकालें, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगी?
जरूर। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। ये कहानी अपनी सारी कमियों के बाद भी ये दिखाती है कि हम कितने भी गहरे अंधेरे में क्यों ना हो, इंसानी जुड़ाव, चाहे वो लियोनार्ड जैसा कोई सहारा हो या लिली जैसा प्यार, ये बदलाव लाने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। अकेलापन तोड़ना और किसी से जुड़ना, ये अक्सर ठीक होने की राह पर पहला सबसे जरूरी कदम होता है।
ये तो बहुत गहरी बात है। और बौद्धिक स्तर पर क्या कहेंगे?
एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि सीधे तौर पर इस किताब के विवाद से जुड़ी है। ये विवाद हमें संस्मरण लिखने की कला की पेचीदगियों पर सोचने को मजबूर करता है। ये दिखाता है कि सच्चाई, याददाश्त, कहानी कहने वाले का नजरिया, ये सब कितने व्यक्तिपरक हो सकते हैं।
हाँ, वस्तुनिष्ठ सत्य क्या है?
बिल्कुल। और इसने लेखक और पाठक के बीच के उस भरोसे के रिश्ते पर एक स्थायी सवाल खड़ा कर दिया है। हम जो पढ़ रहे हैं उस पर कितना यकीन करें? इसने संस्मरण प्रकाशन के तरीकों को भी बदला है।
सही कहा। और आखिर में एक सार्वभौमिक सबक जो सबके काम आ सके।
एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि ये है कि किसी भी तरह की रिकवरी या वापसी, चाहे नशे से, सदमे से या नाकामी से, ये एक बहुत ही निजी और अक्सर मुश्किल लड़ाई होती है। इसके लिए अंदर की इच्छा शक्ति तो चाहिए ही, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले बदलाव के लिए बाहरी सहारा और इंसानी रिश्ते अक्सर बहुत अहम साबित होते हैं। और साथ ही फ्रे की कहानी, जिस भी रूप में वो हमारे सामने है, ये भी दिखाती है कि अपना रास्ता खोजना, भले ही वो दूसरों से अलग हो, गैर पारंपरिक हो, वो भी सही हो सकता है। हर किसी के लिए एक ही समाधान काम नहीं करता। जरूरी है वो रास्ता ढूंढना जो आपके लिए काम करे।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।